यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म वाला भी हूँ, ये क्या बात है? यूसुफ ने खजाने पे नजर रखी हुई थी? नहीं, यूसुफ को उस ख्वाब की वजह से पता था कि इस मुल्क पे मुश्किल दिन आ रहे हैं, क्योंकि मुहसिन थे और मुहसिन लोगों की मदद करना चाहता है। तो यूसुफ ने कहा कि मेरे पास जो इल्म है, यहाँ से पता चलता है कि जहाँ जरूरत हो और आपके पास कोई स्किल हो तो आपको पेश कीजिए, ये हिकमत है। हम हिकमत की भी तो बात कर रहे हैं ना, हिकमत क्या है कि अपनी स्किल्स को पहचाने। बस दफा कुछ लोग सारी जिंदगी वो काम करते रहते हैं जिसकी स्किल नहीं होती और अपनी जो स्किल्स हैं उसको दबा देते हैं। बस आप देखिए कि कुछ लोगों को शौक होता है कि वो हर काम करें। मिसाल देती हूँ कि कोई भी दीन के नाम पे काम शुरू होता है, अच्छा फलां की मस्जिद है, मस्जिद भी बनाएंगे, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और वो ये करते, जो जो कोई दूसरा करता है वो उसकी डिट्टो कापी बनते हैं। क्या हुआ? एक और चीज वैसी बन गई जो पहले थी। हालांकि अगर वो अपनी को खास स्किल देते कि जो पहली जगह पे मौजूद नहीं वो लोगों को देते तो वो चीज ज्यादा फायदा होती। तो हमेशा याद रखिए कि दूसरों के नक्शे कदम पे चलने की बजाय खुद को रोल मॉडल बनाए और अल्लाह ताला फिर आपसे भी खिदमत लेगा। और इस तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। ये जो लफ्ज है ना इस तरह, इसको हाईलाइट कर ले, ये जो कजालिक का लफ्ज है, असल में ये यूसुफ की पूरी जिंदगी के दुखों और गमों की वजह बता दी। बस जब हमारी जिंदगी में इसी तरह के ऊपर नीच की चीजें आती हैं तो वो कजालिका होती है। कभी आपको जिंदगी में कोई तकलीफ आए, खास तौर पे अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के बाद, तो फिर अपने आप को फौरन तैयार कर लें कि इसके पीछे कोई बात है। क्या यूसुफ कभी खुद से बादशाह के पास आके कहते मुझे वजीर खजाना बना दो तो वो बनते? कनान में एक बच्चा पलावा गांव का देहाती, बिल्कुल छोटी सी सोच का मालिक, वो तो कभी बादशाहों के दरबार के मैनर्स भी ना जानता। अल्लाह ने अजीज मिस्र के घर में रखे और कहते कि अजीज मिस्र भी वजीर खजाना था, बादशाहों के माल कैसे रखे जाते उसको भी यूसुफ सीख चुके थे। उधर से बाप से दीन सीखा, इधर आके दुनिया सीखी, और यूसुफ अलैहि सलाम अब बिल्कुल एनरिच्ड हो चुके थे, स्किल्ड पर्सन थे, दीन और दुनिया का बेस्ट मजमुआ बन चुके थे। अल्लाह ताला कहते जब ये सारी प्रेपरेशन हो गई हमने यूसुफ के लिए मिस्र का इक्तदार हमवार कर दिए। वो मुख्तार थे कि इसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। वल्लाही आज भी ग्लोब पर यही जुमला लिखा हुआ है मुअत्ते मुस्लिमा के लिए, शर्त है कि हफीज, अमीन, स्किल्ड ये सब कर लीजिए, फिर कभी आपको मुझे किसी दूसरे को अपनी नाकामियों की वजह कहने की नौबत नहीं आएगी। नसीब बिरहमति नामन नशाओ वला नुज़ी अजरल मुहसिनीन, हम अपनी रहमत में से जिसको चाहते हैं नवाजते रहते हैं, और नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, और आखरत का अजर इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के लिए काम करते रहे। क्या पता चला कि बंदे मोमिन को दुनिया में भी मौके मिलते हैं खैर के, और आखरत का अजर तो अल्लाह ताला ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब यहाँ से यूसुफ अलैहि सलाम की जिंदगी का एक और दौर है। कई साल की जुदाई के बाद अब वो भाई जिन्होंने उनको कुएं में फेंका था हालात का शिकार हुए। कनान में भी कहत आया, बादशाह का ख्वाब सच्चा हुआ। यहाँ से ये बात भी नोट कीजिए कि अल्लाह नॉन मुस्लिम का ख्वाब भी सच कर सकता है। हम कहते हैं मेरे ख्वाब सच्चे हैं तो मैं बड़ी नेक हूँ, या मेरी तबीयत ठीक हो गई तो सब ठीक है। नहीं, बादशाह नॉन मुस्लिम तो उसका ख्वाब सच हो रहा है। कहत आया, मिस्र में भी आया, बाकी जगहों पर भी आया। चूंकि बाकी लोग ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे तो वहां थोड़े ही दिनों में खाने पीने की कमी हो गई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतने खूबसूरत तरीके से मनी मैनेजमेंट की कि जो फसल उगती थोड़ा सा जरूरत का उसको खिलाने के लिए निकाल देते अवाम को, बाकी उसके खुशियों के साथ ही प्रिजर्व कर देते। नतीजा क्या हुआ कि जब कहत आ गया तो मिस्र के अंदर बहुत सारा गल्ला था, ना सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। अब यहाँ नोट कीजिए ऐसे वक्तों में अमूमन दुनिया में क्या होता है, लोग अपनी मर्जी की कीमतें लेते हैं ना, कि चूंकि अब आपको जरूरत है हम लेंगे, लेकिन यूसुफ जैसे हुक्मरान अगर दुनिया को मिल जाए तो वो लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाने की बजाय, उनका खून निचोड़ने की बजाय कि अब तुम अपना और भी सब कुछ हमें दे के कपड़े भी बेच के ही जाओ तो फिर हम तुम्हें एड भेजेंगे, यूसुफ ने फ्री कोटा दे दिया, 1% पर हेड, जिसको आप कहते हैं कि जो आए एक ऊंट पे जितना सामान लादा जाए उतना अनाज उसको देते, और दैट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उम्मत मुस्लिमा का किरदार था, वल्लाह ही था। हजरत उमर का दौर पढ़ के देख लीजिए, खैरात लेने वाला कोई नहीं था, लोग जकात का माल ले लेकर फिरते थे कि हम किसको दें, इतनी दुनिया में फरावानी थी। आप जरूर पढ़िए हजरत उमर पर एक बड़ी प्यारी बुक है अल फारूक के नाम पे, पढ़ के देखिए कि जिससे पता चलता है कि असल अमीर मुल्क कौन से होते हैं। सारा वेस्टर्न कल्चर का और वेस्टर्न कंट्रीज का जो हवा है ना वो हमारे जहनों से निकल जाएगा अगर हमने चंद लोगों के साथ बैठकर दौरे फारूकी पढ़ा। और ये मेरे प्लान में इंशाल्लाह हमने रमजान के बाद कहीं ना कहीं इसको सेट करके तो खुल्फ़ाए राशिदीन को पढ़ना है, कि किस तरह से वो लोग थे, तभी तो हम अपने किरदार को पहचानेंगे और उन्होंने कैसे खिलाफत राशिदा कायम की, कब से प्लान किया हुआ कि ये किसी मौके पे हमने एक शॉर्ट कोर्स करना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने असल से जोड़ दे ताकि हमारा भी तो सर उठे। हम तो सर झुका झुका के जीते जीते गिरे। आप देखिए अल्लाह ने हमारे सर पे उम्मत वसत होने का ताज रखा था, और सर झुकाओ और जो सर गिरा दे तो ताज भी गिरेगा ना। आज हमने सर झुकाए ना तो हमारे ताज भी गिर गए। जिस दिन सर उठा के जीना सीखेंगे उस दिन तकदीर बदलेगी। और सर वही उठाता है जिसके अंदर कोई स्किल होती है। शर्मिंदा और दबे दबे लोग कभी भी सर उठा के नहीं काम कर सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सब के लिए जब किया, यही खबर फैल गई दुनिया में इर्द गिर्द जो भी लोग थे कि मिस्र में एक नरम दिल वाला बादशाह है और वो लोगों को अनाज देता है। ये खबर जब भाइयों तक पहुंची, अब वो देखिए यूसुफ के दरबार में खड़े हैं और इनकी दो तीन मुख्तलिफ हाजरियां इसको पढ़ते जाते हैं, और फिर अगर एंड पे सारे को पाइल अप कर सके तो इंशाल्लाह कर लेंगे। फरमाया वजाए इख्वत यूसुफ, यूसुफ के भाई मिस्र आए और इनके यहाँ हाजिर हुए, इसने इनको पहचान लिया मगर वो इससे नाश्ना थे। ये क्यों हुआ? यूसुफ ने इनको क्यों पहचान लिया? क्योंकि वो बहुत सारे थे, मिस्र से आए, कई बातें मौजूद थी जिससे पता चलता। और दूसरी बात है, मोमिन की फरासत बहुत होती है, वो लोगों को एक नजर देख ले तो वो भूलता नहीं है, वो पहचान जाता है। इसके वक्त वो क्यों ना पहचान सके? पहली बात है, वो तो अपने जोम में यूसुफ को मार चुके और वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस यूसुफ को हमने कुएं में डाला था वो हमें तख्त पे बैठा हुआ बादशाह बना हुआ मिलेगा। बहुत दफा ऐसे ही होता है, लोग आपके साथ दुश्मनी करते हैं, आपकी मुखालिफ होते हैं, वो कहते हैं अब आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी। वो तो सोचते हैं आप कहीं बैठे अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे होंगे, रो धो रहे होंगे और पिछली जिंदगी के महरूमियों पे आंसू बहाएंगे, लेकिन अल्लाह आपको इज्जत देने लगे तो कौन छोड़े आपको। यही हुआ, वो ना पहचान सके, यूसुफ पहचान गए। मगर जब इसने इनका सामान तैयार करवाया तो चलते वक्त इनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। बातों ही बातों में उनसे कहानी सुन ली। उन्होंने कहा एक और भाई है बिन्यामीन, वो सौतेला है, वो घर में, कहा उसको लाना, क्योंकि पर हट देते थे जो आएगा उसको मिलेगा। देखते नहीं हो मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूं और मैं कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूं। यहां से देखिए, मुसलमान में खूबियां होंगी तो उसी को तो पेश करेगा। किसी गैर मुस्लिम को आप अपने मुल्क में बुलाएं या आप किसी मुसलमान के साथ मामला करें, आपको अपने इखलाक के साथ उसको बताना चाहिए कि हम कितने अच्छे लोग हैं और तुम हमारे पास आकर लेते ही हो, हम तुमसे मांगते कुछ नहीं है। जिस दिन मुसलमान गैरों की मदद को रिजेक्ट करके थैंक यू विद थैंक्स के नोट्स के साथ उनको वापस भेजेंगे, उस दिन आप देखिए हमारी इज्जत शुरू हो जाएगी। हमेशा नीचे वाला हाथ ऊपर वाले हाथ से दबाई होता है। एक दफा मुसलमान जुरत कर लें, हम आधा पेट खा लेंगे, हम अपना जेवर बेच देंगे, हम सारे मुसलमान अपने घर बेचकर मुसलमानों को देंगे, लेकिन हमने गैरों की मदद नहीं लेनी। जब तक मदद का कासा नहीं तोड़ेंगे तब तक इज्जत का ताज हमारे सरों पे नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको देगा वो आपसे अपनी मर्जी के काम कराएगा। ये तो बात हम सब अपनी मासियों से भी सीख सकते हैं, बातें भी सुनती हैं, पैसे भी लेती हैं थोड़े बहुत, और साथ हमारे काम भी करती हैं। यूसुफ के अंदर इतना जुरत और इतना एतमाद क्यों था? कहा देखो मैं देता हूं ना, पूरा देता हूं, डंडी नहीं मारता और मेहमान नवाज भी हूं, लिहाजा तुम लेकर आना, और देखो अगर तुम उसको नहीं लाओगे मेरे पास तो मेरे पास ना पटकना। कितने जुरत के से शर्तें मनवा रहे हैं। तो आज हम मुसलमान भी ये कर सकते हैं, शर्त यह कि हम पहले उससे अपनी कमियों को मेकअप कर लें। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे भेजने पर राजी हो जाएं, और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों के गल्ले की बस जो माल दिया जाए वो चुपके से इनके सामान में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान ले जाएंगे या इस फ्याजी पर एहसान मंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटे। एहसान करना चाहते थे ताकि वो वापस आए, और वैसे भी जब चीज किसी की रह जाती है तो उसको देने तो आता है। इससे हिकमत सीखिए। देखिए मुझे जो बात दोबारा इस सूरत को पढ़ने और पढ़ाने से समझ आई वो ये है कि जो शख्स अल्लाह के नाखुशगवार फैसलों को खुशी से मान ले उसको हिकमत मिलती है। जिन मौकों पे जिंदगी में कोई सदमा पहुंचा, आपको दुख पहुंचा, किसी ने आपको डिग्रेड किया, बेइज्जती की, घर छूट गया, आपके बच्चे ने आपको सता दिया, आपके शौहर ने आपको डांट दिया, अगर उस वक्त आप रोने धोने पिटी फीलिंग की बजाय कहें अल्हम्दुलिल्लाह रदी तो बिल्ला रबन, सीने से लगाइए अल्लाह के दिए हुए दुखों और गमों को, अल्लाह आपको हिकमत दे देगा, फिर फैम मिलता है। जो अपने गमों में जीते उनको हिकमत नहीं मिलती, जो अपने गमों से बेनियाज होकर अल्लाह के दीन के गम में जीते हैं अल्लाह उनको हिकमत देता है। यही हुआ, यूसुफ को ये बात क्यों सूझी? क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ था। कहने लगे चले जाओ, बस ठीक है हो गई बात। फिर क्या हुआ? ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे और इस फ्याजी पर एहसान मंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटे। जब अपने बाप के पास गए, अब बेटे वापस जाते हैं, तो अब कहा, अब्बाजान आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिए गए। यहां से आपको इनका नेगेटिव रवैया दिखेगा। गो के अल्लाह ने बाद में इन सबको माफ भी कर दिया था, नबूवत भी मिल गई थी, लेकिन याद रखिए कि अगर यूसुफ के और इनके किरदार में फर्क देखे, जमीन आसमान का फर्क है। यूसुफ का रवैया हर जगह बाद या बती या बरादरान अपने भाइयों को कुछ कहते हैं, लेकिन ये बाप को ये कहने के बजाय कि इतना कुछ मिल गया, घर जाते ही शोर मचा दिया कि जी हमको आइंदा गल्ला नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, वो एम्प्टी ग्लास, आधा ग्लास खाली है कि आधा भरा हुआ है। जिंदगी को पहचाने, अपनी सोच को सीधा करें। अगर जिंदगी में आपके मसले खत्म नहीं हो रहे ना, कल आपको सास अच्छी नहीं मिली, आज आपकी बहू अच्छी नहीं, तो आप उसमें से जरा लफ्ज आप पे गौर कीजिए कि कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ही तो नेगेटिज्म तो नहीं, कहीं आप ही लोगों के ऐप चुनने वाली तो नहीं है। तो लिहाजा इन्होंने आके बाप को पहले बुरी बात बताई और फिर बाद में अच्छी बात, तो बाद में पता चलेगी। लिहाजा कहने लगे, बस आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आए और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। यही जुमले तब भी बोले थे जब यूसुफ को लेके जा रहे थे। وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ گناہ انسان کی جان نہیں چھوڑتا، چاہے 20 سال بھی گزر گئے ہوں، 40 سال کیوں نہ گزر گئے ہوں۔ کب سے انہوں نے باپ کا دل توڑا ہوا تھا، لیکن باپ نے اس بات کو دل میں رکھا ہوا تھا۔ خیر ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہم کو واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر کر سامان اور بھی لائیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ کو وعدہ نہ دو کہ اسے تم میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، ہاں مگر یہ کہ اگر تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے ان کو اپنے اپنے پیمان دیے تو انہوں نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا، جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی، اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ بہت سارے سبق ہیں اس میں ہمارے لیے۔ پہلی بات، آپ دیکھیے کہ مومن ایک سوراخ سے چونکہ دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجنے میں جلدی نہیں کی۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ انہوں نے پھر اس دفعہ اللہ کو بیچ میں رکھا۔ باپ جب یوسف کو بھیج رہے تھے تو یہ جملے نہیں کہے گئے تھے۔ تو جب آپ اللہ کی امان میں کسی چیز کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نقصان سے بھی بچا دیتا ہے۔ پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نظریں بد لگتی ہے۔ بیٹوں کو ایک دروازے سے گزرنے سے کیوں روکا؟ کیونکہ نظریں بد لگ سکتی ہے، اتنے گھبرو قسم کے دیہات کے پلے ہوئے بھائی، اور بھائی تو یوسف کے ہی تھے نا، کچھ نہ کچھ تو رنگ روپ ہوگا نا، تو نظریں بد سے بچنے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، اور نظریں بد کی حقیقت ہے، حقیقت میں جب نظر لگتی ہے تو پتھر پھاڑ لگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو بستر پہ یا قبر پہ پہنچا دیتی ہے۔ اس پہ الحمدللہ ہمارا جو ایک سیمینار ہوا تھا جادو اور اس کے بارے میں، اس میں ایک پورا ٹاپک ہم نے نظر بد کا کیا تھا، کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، آپ سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بہت زیادہ ڈسپلے بھی نہیں کرنا چاہیے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ جب ہم اپنی چیزوں کو بغیر صبح شام کی دعائیں پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، خوب سجا سنوار کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھنے والوں نے شاید ہی کبھی ماشاءاللہ کہو، یا کبھی دعا دیو کہ بارک اللہ یا اللہ مبارک لہم، وہ ایک دم ہاں ہو ہی کرتے ہیں، ہائے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہائے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک مینر ہے، آج ہم مسلمان اس مینر کو بھول گئے۔ کبھی کوئی چیز اچھی لگے آپ کو، اپنے میں، اپنے بچوں میں، دوستوں میں، بہنوں میں، کسی کو دیکھا آپ کو اچھا لگا، فوراً بولیے ماشاءاللہ، پھر نظر نہیں لگے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنا بچہ حسین لگ رہا ہے۔ پتا چلا گھر گئے ساری رات بچہ روتا رہا، پتا چلا اس کی نظر لگی، آپ کی اپنی لگ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اصلاح کی خاطر پچھلی غلطی یاد دلائی جا سکتی ہے۔ याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को शर्मिंदा नहीं किया लेकिन उनकी इस्लाह की कोशिश की। फिर इसी तरह से एक और चीज है और वो क्या है कि उन्होंने कोशिश पूरी कर ली लेकिन अल्लाह की मर्जी चली। तकदीर बमकाबला तदबीर, हम जो कुछ कर ले जो कुछ चाहें होगा वही जो के अल्लाह ताला ने चाहा। तो लिहाजा यही हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से पहुंच गए।